भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद तीसरा अध्याय पांचवा। इस अध्याय का शीर्षक है विदुर मैत्रेय संवाद, श्लोक क्रमांक 28। सह प्यंश गुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सिसृक्षया। पश्चात् महत्तत्व ने अपने आप को अनेकानेक स्वरूपों में जीवात्माओं की भावी निधि के रूप में विभेदित किया। महत्तत्व मुख्यतः तमोगुण प्रधान है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। यह भगवान की कला है और रचनात्मक सिद्धांतों और सफलीकरण के काल की चेतना से परिपूर्ण है। तात्पर्य, महत्तत्व शुद्ध आत्मा तत्व और प्राकृत सत्ता के बीच माध्यम का काम करता है। यह अधिभूत और अध्यात्म का मिलन बिंदु है, जहां से जीवात्मा का मिथ्या अहंकार प्रादुर्भूत होता है। सब जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं। मिथ्या अहंकार के वशीभूत बद्ध जीव भगवान श्री कृष्ण के अंश होते हैं, भी अपरा प्रकृति के उपभोक्ता होने का दावा करते हैं। यह मिथ्या अहंकार लौकिक सत्ता को बांधने वाली शक्ति है। प्रभु पुनः पुनः विभ्रांत बद्ध जीवों को मिथ्या अहंकार से मुक्त होने का अवसर प्रदान करते हैं। इसीलिए समय समय पर प्राकृत सृष्टि होती रहती है। वे मिथ्या अहंकार के क्रियाकलाप को सुधारने की सुविधाएं बद्ध जीवों को देते रहते हैं, किंतु भगवान के अंश के रूप में उनकी सीमित स्वतंत्रता में वे कभी हस्तक्षेप नहीं करते। श्रीमद् भागवत में हम भगवान की दिव्य लीलाओं का भी वर्णन सुनते हैं और ऐसे गूढ़ सिद्धांतों का भी। और विशेष रूप से जब वो हिंदी में अनुवादित होता है तो ऐसे ऐसे शब्द जैसे कि भावी निधि के रूप में विभेदित होता है। अब विदुर और मैत्रेय ऋषि का ये संवाद चल रहा है और ये जानना आवश्यक है कि मैत्रेय ऋषि वो बहुत बड़े विद्वान हैं और महात्मा विदुर वो भी कोई कम विद्वान नहीं। तो दो विद्वत जब उनमें संवाद होता है तो ये भली भांति जान लेना चाहिए कि सिद्धांतों का वर्णन इतनी गूढ़ तरीके से होना आवश्यक है। यहां पर महत्वपूर्ण शब्द इस श्लोक का है भगवत दृष्टिगोचर, जिसका अर्थ है श्री भगवान श्री कृष्ण के विषय में दृष्टि की सीमा। हमारे वैदिक ग्रंथों को दर्शन शास्त्र भी कहा जाता है। फिलॉसफी को यदि हिंदी में अनुवादित किया जाए तो सिद्धांत को कहते हैं दर्शन शास्त्र। श्रील प्रभुपाद अक्सर अपने तात्पर्यों में अंग्रेजी में वो लिखा करते थे रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। तो दर्शन शास्त्र या रिवील्ड स्क्रिप्चर्स का अर्थ क्या है? जैसे यहां पर भगवत दृष्टिगोचर, कि वो शास्त्र जो हमें श्री भगवान का दर्शन कराए, इसलिए उसे दर्शन शास्त्र कहते। दो स्क्रिप्चर्स विच रिवील द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। अब यदि हम भगवत गीता में भी पढ़ें तो भगवान श्री कृष्ण अपना दर्शन दे रहे हैं अर्जुन को। कैसे? साक्षात तो खड़े हैं भगवान, परंतु साक्षात खड़े होने के बावजूद अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण को देख पा रहे हैं वो इन आंखों से नहीं, यहां से। तो जो भगवान की वाणी, और उसे कहते हैं शास्त्र चक्षु, तो शास्त्रों या भगवद गीता साक्षात भगवान के मुख से श्रवण करने के पश्चात जो अर्जुन ने दर्शन किया वो है भगवान का वास्तविक दर्शन, या यहां पर जो कहा गया है भगवत दृष्टिगोचर। अब जैसे दूसरे ही अध्याय में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, मेरे ख्याल से शायद 11वें श्लोक के तात्पर्य में, कि ज्ञान किसे कहते हैं, व्हाट इज नॉलेज। हमारे कई शास्त्री जी, नॉलेज मीन्स टू नो मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। तो श्रील प्रभुपाद ने इस सिद्धांत के द्वारा, ये हम कह सकते हैं कि MSc की डिग्री हमें दी, मैटर स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ, MSc। जैसे 13वें अध्याय का शीर्षक है प्रकृति पुरुष और चेतना, और उसमें भी बहुत ही तकनीकी सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे, और वो भी कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर आपातकालीन स्थिति में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति पुरुष और चेतना, नेचर एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस, फिर तीन गुण वो किस प्रकार से जीवात्मा के ऊपर कार्य करते हैं। तो इसके द्वारा भगवान अर्जुन को दर्शन दे रहे हैं स्वयं का, और स्वयं भगवान जो भौतिक संसार में आके लीला कर रहे हैं उसके संदर्भ में भी अर्जुन को दर्शन दिया जा रहा है। जैसे विश्वरूप, विश्वरूप का दर्शन भगवान ने अर्जुन को दिया, अर्जुन को यह दिखाने के लिए कि मैं वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक संसार में कैसे व्याप्त हूं। तो यदि हम हमारी दृष्टि के अलग अलग स्तर देखें तो ये भौतिक प्रकृति और दर्शन शास्त्र वो हमारी दृष्टि को विकसित करने के लिए। तो आज हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे कि शास्त्रों पर आधारित हमारी दृष्टि के कौन कौन से स्तर होते हैं। जैसे कि बद्ध जीव सर्वप्रथम वो माया के वशीभूत, और पूर्ण रूपेण यहां पर जैसे कहा गया है कि महत्तत्व मुख्यतः तमोगुण प्रधान है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है, तो महत्तत्व से पूरी सृष्टि के अलग अलग तत्व बाहर आते हैं। यहां पर मुख्यतः तमोगुण बताया गया है। तो यदि हम जो जानवर हैं, अन्य प्राणी हैं, अन्य योनियां जो हैं मनुष्य के अलावा, कई तो मनुष्य भी, उनमें यदि हम देखें तो सबसे निचला स्तर दृष्टि का, हम दृष्टि के स्तर देख रहे हैं, चार स्तर दृष्टि के सर्वप्रथम हम देखेंगे। सबसे निचला स्तर, उसे शास्त्रों में कहा गया है आवरणात्मिका, कि जैसे जब मोतियाबिंद किसी हो जाता है तो उसे ठीक से दिखाई नहीं देता, धीरे धीरे यदि वो ठीक नहीं किया जाए तो वो उसे अंधा बना देता है, फिर वो कुछ नहीं देख पाता, पहले धुंधला दिखता है और फिर पूर्ण रूपेण अंधा। तो जब हम इस दृष्टि को देखें, आंखें हैं परंतु कुछ दिखाई नहीं देता, अंधा उसे कहते हैं। तो आवरणात्मिका शक्ति जो माया देवी की है, उसमें ये शक्ति के द्वारा बद्ध जीव को माया देवी पूर्ण रूपेण अंधा बना देती है। जैसे कि नलकुवर और मणिग्रीव, इनके विषय में श्रीमद् भागवत में कहा गया है मदांध, अंधा बताया गया है इनको। ऐसा नहीं, दिखने में बहुत सुंदर, अब यदि अंधे व्यक्ति को यदि आपने देखा हो तो दिखने में इतने सुंदर नहीं दिखते, उनकी आंखें जो अंधी हो चुकी हैं पता लग जाता है। तो किसी की दृष्टि सही मायने में है तो उसकी सुंदरता भी उसको उसमें वृद्धि होती है। यहां पर नलकुवर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अंधे थे वो, इतने अंधे कि ये नहीं देख रहे थे कि कैलाश धाम में मंदाग्नि गंगा में वो ऐसे घोर पाप में लगे हुए थे, अंधे, बिल्कुल अंधे। और इतना ही नहीं, साक्षात नारद मुनि सामने आ गए और नारद मुनि भी, उनका क्या स्तर है वो भी उन्हें दिखाई नहीं दिया। इसे कहते हैं आवरणात्मिका शक्ति। नीति का एक श्लोक है जिसमें अलग अलग प्रकार कि जो अंधे व्यक्ति हैं उनके विषय में बताया गया है, कोई कामांध, कोई मदांध, कोई जड़ांध, क्रोधांध, कोई क्रोध के वशीभूत होकर अंधा है, कोई काम के, कोई लोभ के, कोई जड़ वस्तुओं के वशीभूत होकर अंधा है। तो ये सबसे निचला स्तर है आवरणात्मिका शक्ति, जिसके अंदर एक इतना गहरा आवरण माया देवी का होता है कि उस जीव को कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे जानवर जो होते हैं, उन्हें आहार निद्रा भय मैथुन के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। अब देखिए, लोग आजकल ये नेशनल ज्योग्राफिक या जो भी इस प्रकार के चैनल देखते हैं जिसमें जानवरों को दिखाया जाता है, और इतना वो बहुत कीमती कैमरा से उनकी शूटिंग लेते हैं समुद्र के नीचे जाकर, और कहीं रेगिस्तान में या कहीं अफ्रीका के जंगलों में चींटियां कैसे जीती हैं, और उसमें यदि आप देखो तो इतनी बड़ी बड़ी चींटियां दिखाते हैं वो कैमरा को, जूम इन जूम आउट कर, और दिखाते हैं कि कैसे अब ये चींटी कैसे पैदा हुई, पैदा होने के बाद फिर चींटी ने क्या किया, फिर और कितनी चींटियों से ये चींटी मिली, क्या खाया, कैसे चींटी सोती है क्या वही चीज, आहार निद्रा भय मैथ। बस उसी को बहुत तकनीकी तरीके से प्रदर्शित कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो उसमें इन प्राणियों का जीवन इस प्रकार का है कि कोई वहां पर आशा नहीं कि भगवत चर्चा हो या भगवत दृष्टिगोचर या उनकी दृष्टि में श्री भगवान का कोई की कोई छवि आए, का कोई रूप आए। तो ये सबसे निचला स्तर। और फिर इससे थोड़ा ऊंचा स्तर है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है पश्यन अपि न पश्यति देहपत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असच्छपि तेषां प्रमत्त निधनं पश्यन अपि न पश्यति। कि दिख रहा है उसे, अंधा नहीं है वो, दिख रहा है। पश्यति का अर्थ है देखना, तो उसे दिख रहा है परंतु न पश्यति, देखते हुए भी अनदेखा कर देना। होता है ना कई बार हम किसी को जानते हैं लेकिन जानना नहीं चाहते, कि जानते हैं कि यदि जान पहचान में बता दूंगा या बात करना शुरू कर दूंगा तो फिर बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी या इतना टाइम ये ले लेगा मेरा। तो देखते हुए भी अनदेखा कर देना, पश्यन अपि न पश्यति। अब इसमें हम देखते हैं अजामिल का उदाहरण या सौबरी मुनि का उदाहरण। अजामिल और सौबरी मुनि शास्त्र को जानते थे, ऐसा नहीं था कि वो आवरणात्मिका शक्ति के अधीन थे, वो शास्त्रों को जानते थे। अजामिल के विषय में कहा गया श्रुति संपन्न शील गुण व्रतालय, श्रुति संपन्न अर्थात शास्त्रों को पूर्ण रूपेण, वो भी श्रुति शास्त्रों को। यहां पर तो श्रुति शास्त्रों को इतना आसान करकर हमें स्मृति के रूप में दिया है, कहानियों के रूप में, लेकिन श्रुति शास्त्र जो कि उपनिषद, वो जो उपनिषद की भाषा इस प्रकार की है जो आज हम पढ़ रहे हैं, भाव निधि के रूप में विभेदित किया गया महत्वत्व मुख्यतः तमोगुण प्रधान भूत जो होता है, ये स्मृति शास्त्र है श्रीमद् भागवत। और ये श्रुति शास्त्र इससे भी ज्यादा वो जटिल होता है समझने के लिए। तो अजामिल श्रुति संपन्न, श्रुति शास्त्रों में संपन्न, और सौबरी मुनि उन्होंने जो तपस्या, तपोबल जो उन्होंने हासिल किया था कि जमुना के अंदर बिना सांस लिए कितने वर्षों तक तपस्या कर रहे, और दोनों प्रभावित देखिए किससे हुए। सौबरी मुनि प्रभावित हुए मछलियों को देखकर, और अजामिल प्रभावित हुआ एक वैश्य को देखकर, एक शूद्र और एक वैश्य को देखकर। तो यहां पर यह समझ में आ रहा है कि उन्होंने आंखों से देखा कि क्या हो रहा है परंतु न पश्यति, फिर भी वो शास्त्र के द्वारा नहीं देख पाए कि इसका परिणाम क्या है। तो इसलिए जब कोई इस स्थिति में आता है पश्यन अपि न पश्यति, इसका एक और विभाजन हम कर सकते हैं कि उसके परिणाम को वो नहीं देख रहे थे। और अजामिल ने परिणाम अंत में देखा जब यमदूत आए, और सौबरी मुनि ने जब उस राजा की 50 पुत्रियों से विवाह कर लिया और कई वर्षों पश्चात सौबरी मुनि को यह साक्षात्कार हुआ परिणाम का, और फिर पश्चाताप किया उन्होंने सौबरी मुनि ने। तो एक है कि परिणाम दिखता नहीं, पश्चिन अपिन पश्यति, और एक है कि परिणाम देखना नहीं चाहते। जैसे हमारे बंबई के राधा गोपीनाथ प्रभु एक बार बता रहे थे कि वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे, तो उन्होंने एक व्यक्ति को भगवद गीता दिखाई और वो नहीं लेना चाहता था, तो प्रभु जी ने उनको कहा कि कम से कम आप देख लो, देखने में क्या हर्ज है, क्योंकि ये बताया गया था कि यदि कोई स्पर्श भी कर ले श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता को तो कुछ परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो इस व्यक्ति ने राधा गोपीनाथ प्रभु से कहा मैं इसको छूंगा भी नहीं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछा कि क्यों, यदि मैं इसको छू लूंगा तो तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा। तो प्रभु जी का साक्षात्कार था, वो कह रहे थे कि मैं उससे प्रेरणा ले रहा था कि इसको इतना विश्वास है इस भगवद गीता में कि यदि ये छू लेगा तो मेरा जैसा बन जाएगा, मुझे क्या इतना विश्वास है, मैं इसे हाथ में लिया हूं कितने वर्षों से। तो इसे परिणाम दिख रहा था, सही परिणाम था, हाँ छू लेने से वो हो जाता था उनके जैसा, कितने तो हो गए, लेकिन वो देखना नहीं चाहता था। पश्यन अपि न पश्यति। जैसे इस भौतिक संसार में लोग ये मृत्यु जरा व्याधि इनको देखते हैं, लेकिन और इनके परिणामों को भी देखते हैं कि ये कहां से शुरू ये सब कुछ हुआ है। कोई व्यक्ति इतना बीमार है उसका परिणाम क्या है, इतना सिगरेट पिया है, इतना दारू पिया है, इतना इंद्रिय भोग किया है जिसके वजह से पूरा शरीर उसने खत्म कर दिया, पूरा अंदर से खोखला कर दिया शरीर को। और ऐसा नहीं कि उसे पता नहीं था, सब पता था, परंतु परिणामों को देखना नहीं चाहता था। जैसे कुछ वर्ष पहले जर्मनी में, जर्मन देश में एक घटना हुई, वहां पर एक व्यक्ति वो अपने घर में मरा हुआ पाया गया। तो जब पुलिस वगैरह आई तो उन्होंने देखा कि इसने आत्महत्या की थी, और वो होता है सुइसाइड नोट लिखते हैं, तो उसमें उसने लिखा था कि बहुत सुंदर दिखने वाला था और उसने अपने वृद्ध अवस्था आने से पहले अपने आप को मार दिया था, दिखने में बहुत सुंदर था। उसने लिखा था कि मेरे मरने का कारण कोई नहीं, मुझे वृद्ध अवस्था से बहुत डर लग रहा था, आई वॉज अफ्रेड एंड स्केर्ड ऑफ ओल्ड एज। खैर यहां तक तो ठीक है, समझ सकते हैं। और उसने अपने आप को मारा कैसे, उसने एक ऐसी बंदूक खरीदी जिसमें सबसे छोटी सी छोटी गोली आप डाल सको, कई बंदूकें होती हैं बड़ी बड़ी गोलियां होती हैं, अलग अलग साइज की गोलियां होती हैं, इसने ऐसी बंदूक खरीदी जिसमें छोटी सी छोटी गोली आपको मार दे। तो छोटी सी छोटी गोली क्यों उसने इस्तेमाल की अपने आप को मारने के लिए, कि मरने के बाद भी मेरा शरीर विकृत नहीं होना चाहिए, जब इतना सुंदर दिख रहा है मरने के बाद भी वो सुंदरता उसकी बरकरार रहनी चाहिए। और उसने नोट में लिखा था कि यदि कोई घाव या खून यहां वहां कहीं दिखे तो उसको पहुंच देना, मेरे फ्यूनरल में आई शुड बी लुकिंग गुड. बहुत से ये अभिनेता अभिनेत्रियां, उन्होंने आत्महत्या इसलिए की, एक झुर्री जब देखी अपने चेहरे पर, खत्म कर दिया अपने आप. तो परिणामों को देखना नहीं चाहते थे, परिणामों से दूर भागना, इसे भी पश्यन अपीना पश्यति इस श्रृंखला में ही आता है. तो अजामिल, सौबरी मुनि, विश्वामित्र मुनि, इन्होंने उस समय परिणामों को देखा नहीं, लेकिन देखने के पश्चात साक्षात्कार हो गया इन तीनों को. क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड था कुछ ना कुछ शास्त्र पर आधारित, इनकी नींव शास्त्र पर आधारित थी, इसलिए पुनः ये सही मार्ग पर आ गए. तो ये दूसरा स्तर है, पश्यन अपीना पश्यति. अब तीसरा स्तर, भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता के उसी तीसरे अध्याय 13वें अध्याय में बताते हैं, प्रकृति पुरुष और चेतना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम. अब इस अध्याय में भगवान ज्ञान के कुछ 20 मुद्दे बताते हैं, 20 पॉइंट्स ऑफ नॉलेज 13वें अध्याय में. तो 20 पॉइंट्स ऑफ नॉलेज में ये एक पॉइंट है, अनुदर्शनम. किसका दर्शन? जन्म मृत्यु जरा व्याधि. और अनुदर्शनम भगवान ने कहा है. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है अनु का क्या अर्थ होता है? बहुत बार हमने श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में या प्रवचनों में सुना होगा अनु. अनु का क्या अर्थ होता है? नहीं नहीं, वो अणु है, अणु, अण अण. मैं वो पूछ रहा हूं अनु अनु न फॉलो, जैसे अनुगमन, अनुशीलन, अनुसरण, अनुकरण, टू फॉलो. तो यहां पर भगवान 13वें अध्याय में कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम. केवल दर्शनम नहीं कहा है, अनुदर्शनम करना है. अर्थात जो हमारे पूर्वज आचार्यों ने हमें उनके साक्षात्कार के द्वारा दर्शन कराया है, किसका? जन्म मृत्यु जरा व्याधि का. जैसे इस कैटेगरी में, अनुदर्शनम की कैटेगरी में मृगरारी का उदाहरण. ये मृगरारी अपने पीड़ाओं को देखा कि कैसे ये नरक में यातना भुगतेगा, जो भी पाप कर्म में लगा हुआ था मृगारी, तो कैसे ये नरक में यातना भुगतेगा? किसके द्वारा? नारद मुनि के द्वारा. तो दर्शनम हुआ उसे, लेकिन उसके पहले अनु. नारद मुनि की दृष्टि के पद चिन्हों पर चलते हुए जो उसने दर्शन किया, अर्थात या तो गुरु, साधु या शास्त्र. जैसे गौतम बुद्ध, उन्होंने भी दर्शन किया. सर्वप्रथम जब उन्होंने किसी शव यात्रा को देखा, या जो भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन चार चीजों को जब उन्होंने सर्वप्रथम देखा अपने जीवन में, तुरंत साक्षात्कार हो गया कि ये जीवन किसी और के लिए बनाया गया है, साक्षात्कार के लिए बनाया गया है. तो वो उनका दर्शन जो था वो दर्शन शास्त्र पर था आधारित. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि जब हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसका भी दर्शन करते हैं, तो एक देखिए भक्त इसका दर्शन करता है और एक अभक्त दर्शन करता है, दोनों में अंतर क्या है? अणु, वो अणु का अंतर है। अब इस्कॉन में आने से पहले भी हमने जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दर्शन किया था, किया था कि नहीं? कितने जन्म जन्मांतर से हम करते आ रहे हैं इसका दर्शन, लेकिन इस्कॉन में आने के बाद जब हमें श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायी बताए कि ये जन्म मृत्यु और जरा व्याधि का असली स्वरूप क्या है, और इस भौतिक संसार में ये चार चीजें होने का कारण क्या है, ये हमें सुधारने के लिए है, हमें सिखाने के लिए है, हमें जगाने के लिए है, अपनी निद्रा से आवरणात्मक का शक्ति से बाहर निकालने के लिए। जब फिर हमने देखा तो उसे कहते हैं अनुदर्शनम। इसलिए भगवान कहते हैं कि केवल जन्म मृत्यु जरा व्याधि को देखो मत, उसे गुरु साधु शास्त्र पर आधारित देखो, तब जाकर हमें इससे छुटकारा होगा, तब जाकर हम इससे छुटकारा पा सकेंगे। जैसे शिल प्रभुपाद जब देखा करते थे, पाश्चात्य देश में गए और पाश्चात्य देश में सब कुछ वहां पर चकाचौन, चमक धमक वहां की, कितने सारे भारतीय वहां जाकर उन्होंने भी पाश्चात्य देश को देखा, लेकिन जब प्रभुपाद जाकर देखे तो प्रभुपाद ने लंदन, हालांकि उस समय जब श्रील प्रभुपाद वहां पर गए थे तो लंदन जो था वो अमेरिका से भी प्रमुख माना गया था, क्योंकि हालांकि अमेरिका अभी माना जाता है बहुत फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो भी कुछ, लेकिन इनके ऊपर, सबके ऊपर, इन सब राज्यों के ऊपर, इन सब देशों के ऊपर राज्य किया था ब्रिटिश एम्पायर ने, और प्रभुपाद वहां जाकर लंदन को कहते हैं हेल, नरक है। जैसे प्रभुपाद एक मॉर्निंग वॉक पर थे और श्याम सुंदर प्रभु अन्य प्रमुख प्रभुपाद के शिष्य वो प्रभुपाद के साथ थे, तो अमेरिका में प्रभुपाद पैसिफिक ओशन उसके बीच पर सुबह के समय चल रहे हैं, और एक बहुत ही सुंदर बंगला, बीच हाउस, सभीओं ने देखा, प्रभुपाद ने भी देखा। तो यहां पर हम दृष्टि की बात कर रहे हैं, देखिए प्रभुपाद ने देखा तो सभी को लगा कि इतना सुंदर, दिखने में इतना सुंदर और बहुत अच्छा लॉन बाहर, गार्डन, और उसका जो मालिक था वो बाहर बैठा, वो सुबह का जो वातावरण है उसका आनंद ले रहा था, पेपर वगैरह पढ़कर, जो भी वहां के माहौल का, वातावरण का। तो अभी सभी प्रभुपाद की तरफ देख रहे थे कि प्रभुपाद का रिमार्क क्या होगा, तो प्रभुपाद ने कहा परफेक्ट हाउस। तो सभी कहे हमारे मन में भी यही सब आ रहा था, घर होना चाहिए तो ऐसा, घर हो तो ऐसा। तो प्रभुपाद ने कहा परफेक्ट हाउस, परफेक्ट लोकेशन, समुद्र के तट पर। लोग कितना करोड़ों रुपया देते हैं समुद्र के तट पर घर लेने के लिए। परफेक्ट हाउस, परफेक्ट लोकेशन, परफेक्ट गार्डन, सब कुछ प्रभुपाद परफेक्ट परफेक्ट बता रहे थे। और फिर लास्ट में प्रभुपाद ने कहा इट्स टू परफेक्ट टू रिनाउंस। तो ये प्रभुपाद की दृष्टि थी कि इस व्यक्ति ने इसे इतना पक्का बनाया इस घर को कि इसको छोड़ना तो पड़ेगा एक ना एक दिन, बहुत तकलीफ होगी इसे। जब ये आसक्ति छूटेगी किसी न किसी ये न के न प्रकार है ना, जब छूटेगी तो इसे इतनी तकलीफ होने वाली है। तब देखिए श्याम सुंदर प्रभु बता रहे थे कि हमारा विजन क्या था और प्रभुपाद का विजन क्या था। प्रभुपाद ने भी ये नहीं कि प्रभुपाद ने कहा कि ये सब माया, इसमें गंदगी है सब कुछ, ये नहीं। प्रभुपाद ने कहा सब कुछ बहुत अच्छा है, इट्स टू परफेक्ट टू रिनाउंस, क्योंकि वो होना आवश्यक है। या तो वॉलंटरली उसको रिनाउंस करना होगा उसे, या इनवॉलंटरली किसी न किसी प्रकार से तो वो छूटने वाला है। तो इसे कहते हैं अनुदर्शनम। फिर जब उन्होंने दर्शन किया उसी घर का, दूसरी बार जब गए उस घर का दर्शन किया, तो अब उनकी दृष्टि में परिवर्तन आ गया उन भक्तों के। तो वो दर्शन कैसा था? अनुदर्शनम। तो ये तीसरा स्तर है, ये इसमें विकास हो रहा है। निचला, सबसे निचला स्तर था आवरणात्मिक अंधापुरा, फिर पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी अनदेखा, और अब अनुदर्शन। और सबसे ऊंचा स्तर चौथा है प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि वो दृष्टि जो कि प्रेम के अंजन से परिप्लुत्व है, दैट विजन विच इज एनॉइंटेड विद द साल्व ऑफ लव। जैसे प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज ने जब नरसिंह देव को देखा तो प्रहलाद महाराज ये नहीं देख रहे थे कि कितना भयानक दिख रहे हैं। हालांकि प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के थे, एक 5 वर्ष का लड़का छोटा सा, वो तो एक आवाज से भी रोना शुरू कर दे, सोचिए नरसिंह भगवान की चिंगाड़ कितनी थी। कि यहां तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी, बड़े बड़े दिग्गज, लक्ष्मी देवी, वो सब थर थर कांप रहे थे, परंतु प्रहलाद महाराज वो गुणगान कर रहे थे सुंदरता के, वो नरसिंह भगवान की सुंदरता का गुणगान कर रहे थे। उनकी दृष्टि में नरसिंह भगवान इतने सुंदर दिख रहे थे। और वो अपना कौन सा किताब है, गोप कुमार का, गोप कुमार ट्रैवलिंग, हाँ, बृहद भागवतामृत में कहा गया है कि प्रहलाद महाराज को वो कृष्ण दिख रहे थे। इसे कहते हैं प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन। गोपियों, अब गोपियों का उदाहरण ले कि रासलीला में जब भगवान अंतर्धान हो गए तो गोपियां ढूंढ रही हैं, तो भगवान नारायण के रूप में प्रस्तुत हुए, चतुर्भुज नारायण के रूप में, तो गोपियां अपनी आंखों से नारायण को देख रही हैं, वो भी स्वयं साक्षात कृष्ण ही हैं, लेकिन उनकी जो आंखें भगवान श्री कृष्ण, जो श्याम सुंदर कृष्ण हैं, वृंदावन चंद्र जो हैं, उनके प्रेम से इतनी परिप्लुत्व थी कि जब चतुर्भुज नारायण को देखा तो उनसे पूछने लगी कि कृष्ण को देखा है कहीं। और गोपियों के इस प्रकार के प्रेम को देखकर चतुर्भुज नारायण के दो हाथ पिघल गए, कृष्ण जो चतुर्भुज के रूप में आए थे उनके दो हाथ पिघल गए। ये उनकी दृष्टि की शक्ति, उनके भक्ति की जो दृष्टि, उसकी शक्ति गोपियों की। तो अब यदि हम हमारी साधना भक्ति को लें तो साधना भक्ति में भी ये 4 स्तर देखते हैं हम। जब हम नए नए इस्कॉन में आते हैं तो आवरणात्मिका शक्ति कुछ समझ में नहीं आता, कि जो बताया जाता है उसी प्रकार से हम एक प्रकार से अंधाधुन करते रहते हैं। बताया जाता है ऐसे दंडवत करो, सीधे नहीं, ऐसे साइड से दंडवत करो, तो हम बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने फॉलो करते हैं। एक प्रकार से हम उसके पीछे तथ्य क्या है, सिद्धांत क्या है, उसके संदर्भ में अंधे रहते हैं। तो ये कहते हैं ये सबसे पहला स्तर है जब हम आते हैं। जैसे मुझे याद है कि मैं एक दफा पूना में था और वहां पर एक भक्त पहली बार वो मंदिर में आए थे, तो मैं मंदिर में बैठा हुआ था तो वो मिले मुझसे और वो पूछ रहे थे कि उन्हें राधेश्याम प्रभु से मिलना था। तो मैंने कहा वो प्रोग्राम के लिए गए हैं, मैं भी रुका उनके लिए। तो मुझसे पूछे कि अच्छा अच्छा अभी आप कुछ जानते हैं मंदिर में क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए। मैंने कहा मतलब नहीं, आप मुझे बताइए कि अब मैं मंदिर में कैसे चलूं, मेरा व्यवहार क्या होना चाहिए। तो मैंने उनको कहा सबसे पहले आके दंडवत करना चाहिए, तो कहां कौन से पोजीशन में, लेकिन पूछा नहीं कि दंडवत। अब जैसे श्रील प्रभुपाद को मैंने कहा कि श्रील प्रभुपाद इनको दंडवत कीजिए, आप पहले इस प्रकार से कीजिए, सिखाया उन्हें, फिर भगवान के सामने लाया, भगवान का दंडवत कीजिए। तो मैं देख रहा था कि ये व्यक्ति, इसने मुझसे कुछ पूछा नहीं कि ये कौन है, श्रील प्रभुपाद कौन है और मुझे ऐसे क्यों दंडवत करना चाहिए, दंडवत का अर्थ क्या होता है। लेकिन अंधाधुन किए जा रहा था, अच्छी बात है क्योंकि भगवान के संदर्भ में कर रहा है, लेकिन यदि जान के कोई करे उसके पीछे पर्पज क्या है वो जान के करे तो और अच्छा है। जैसे एक बार एक हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में एक व्यक्ति आया करते थे, तो सुबह दर्शन आरती के लिए आते थे। तो दर्शन आरती में इनको जैसे हमारा गोविंदम आदि पुरुषम जो रिकॉर्ड शुरू होता था तो इनको कुछ समझ में नहीं आया क्या चल रहा है, खाली गोविंदम समझ में आता था, वो थोड़ा क्लियर सुनता था उनको, उसके बाद में आगे क्या है वो कुछ समझ में नहीं आता था। तो एक बार मैं फूल अर्पित कर रहा था, मेरे बगल में खड़े तो ये जोर जोर से गा रहे हैं गोविंदम हरे कृष्णा परमात्मा शांति। तो मेरा ध्यान थोड़ा भंग हो गया, मैं भी सोचने लगा ये नया मंत्र कहां से आया। हम देखते हैं बहुत बार ऐसी स्थिति होती है जब तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा पहली बार कोई करने आता है, उनको वो जल दो तो उनको समझ में नहीं आता अभी क्या करें इसका, वो आचमन करने के लिए। और जब हम जानने लगते हैं कि ये सारे जो रिचुअल्स हैं भक्ति के, इसके पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो फिर दूसरा स्तर, फिर पश्यन्नपि न पश्यति, कि हम जानते हुए भी कि इसके पीछे रिचुअल्स के पीछे उद्देश्य क्या है, स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्य न जातुचित। जितनी सारी विधियां हैं, यम नियम जितने सारे हैं, उसके पीछे कारण और उद्देश्य यह है कि हमारा मन भगवान श्री कृष्ण में लगे, मन कृष्ण निवेश है। लेकिन कितना समय बीत जाता है हमारा, ये जो पीरियड है ये सबसे बड़ा पीरियड है ये पश्यन्नपि न पश्यति का, कि जब कर रहे हैं लेकिन फिर भी कृष्ण प्रेम नहीं दिख रहा, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, साक्षात श्याम सुंदर कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि प्रतिमा नहीं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन सामने, लेकिन हमारी आंखें क्या देखती हैं कि आज मेरा फेवरेट कलर है ड्रेस का, आज वो शॉल थोड़ा ठीक से नहीं किया है, आज टर्बन थोड़ा नीचे आ रहा है, तो हमारी दृष्टि केवल उसी में अटक जाती है। हालांकि सामने साक्षात भगवान है, हरिनाम में भगवान स्वयं अपने निज रूप में है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये है दूसरा स्तर, पश्यन अपि न पश्यति। और फिर बीच बीच में थोड़ा हम कुछ ठीक से जप कर लेते हैं, ठीक से भक्ति करते हैं, फिर अनुदर्शनम, जो तीसरा स्तर हमने देखा, अनुदर्शनम का अर्थ है फिर हमारे अनर्थ समझ में आते हैं हमें, कि हमारे अंदर कितनी काम वासना है, हमारे अंदर कितना क्रोध है, कितना लोभ है, कितना मात्सर्य है। और ये दर्शनम हमें हमारे गुरु और जो गुरु परंपरा है वो दिलाते हैं, इसलिए उसे केवल दर्शन नहीं, वो कहा गया है अनुदर्शनम। तो ये स्थिति है वो जो अनर्थ निवृत्ति की स्थिति है, जिसमें अनर्थों का दर्शन होता है। और फिर यदि हम सही रूप से प्रयास करते रहें तो जो चौथा स्तर है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, तब फिर हमारा जो नाम जप होगा और जो हमारी साधना भक्ति होगी, अर्च विग्रह की सेवा, जो कुछ वैष्णव का संग, वो सही मायने में होगा। तो जब हम ये सब सुनते हैं कि हमारे जीवन में गुरु जो हैं वो ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, उसमें भी इस श्लोक में भी कहा गया है कि गुरु करते क्या हैं, कि हमारी जो बंद आंखें हैं, चक्षुर उन्मिलितम, आंखें बंद हैं अर्थात जो दृष्टि हमें नहीं मिली हुई है या जो गलत दृष्टि मिली हुई है उसे ठीक कर कर गुरु जो हैं वो वहां पर क्या प्रस्थापित करते हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रेम की दृष्टि। लेकिन उसके लिए हमें उनका अनुगमन करना है, अनुशीलन करना है, अनुसरण करना है उनके आदेशों का, उनके पदचिन्हों पर चलते हुए। तो यही इस श्लोक में जो मैत्रेय और विदुर के संवाद में आज कहा गया है कि हालांकि महत्तत्व और जो भी प्रधान, इन सब के विषय में ये दोनों चर्चा कर रहे हैं, परंतु इन दोनों की दृष्टि क्या है, भगवत दृष्टि गोचर, और वो यही बता रहे हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के प्रारंभ में कहते हैं, महत्तत्व शुद्ध आत्म तत्व और प्राकृत सत्ता के बीच माध्यम का काम करता है। तो जब हम इस माध्यम को जान लेंगे कि ये महत्तत्व अर्थात ये भौतिक संसार ये एक माध्यम है हमारी चेतना को परम चेतना से मिलाने के लिए, इट्स अ ब्रिज विच कनेक्ट्स आवर कॉन्शियसनेस विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। और जब उस दृष्टि से हम इस भौतिक संसार को देखेंगे तो जैसे हमने आज चर्चा की, ये जो अलग अलग दृष्टि के हमारे स्तर हैं उसे पार होते होते जो सर्वोच्च स्तर है प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, उस स्तर को हम प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा। प्रभु जी, बहुत बार देखते हैं कि जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो आवरणात्मिका स्थिति में होते हैं, यानी वो कवर्ड अप रहते हैं, उनको वो तीन गुणों के आधार पर सब कार्य करते रहते हैं, तो उनको ये स्तर तक कैसे लाए जिससे वे भक्ति स्वीकार करें, क्योंकि अप्रोच ही नहीं कर पाते कभी कभी किसी को, अगर कोई क्रोधांध हो गया हो या किस लोभांध हो गया हो तो उनको अप्रोच ही नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों को भक्ति के स्तर तक कैसे ला सके, या उनको भक्ति वो स्वीकार करेंगे उसके लिए क्या करें?
जैसे कि आपने जो प्रश्न पूछा, यही चिंता नारद मुनि को थी जब उन्होंने मणिगिरि और नलकुवर को देखा कि ये इतने अंधे हैं कि इनको मैं क्या प्रवचन दूंगा, वो कोई प्रवचन सुनने की स्थिति में नहीं थे। अब नारद मुनि जी जो कि इतने महान प्रचारक हैं, जिन्होंने भागवत का संदेश व्यासदेव जी को दिया, नलकोर और मणिग्रीव को उनके उस आवरणात्मिक स्थिति से बाहर निकालने के लिए नारद मुनि ने शाप दिया। ये नहीं बोल रहे अभी हम कि हमें हमें वो करना है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि उस स्थिति में जो आवश्यक था, वट एवर वॉज नीडफुल ही डिड, लेकिन श्रीमद भागवत में उसे शाप नहीं कहा गया है। सुखदेव गोस्वामी उसे शाप नहीं कहते, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो देवर्षि नारद का अनुग्रह था, क्योंकि उन्हें वृक्ष बनाया कहां, वृंदावन में, पूर्वी नंद भवन में। तो इससे यह समझ में आता है कि उनका यह अनुग्रह जो था अज्ञात सकृति, नलकोर और मणिग्रीव को नहीं पता था कि वो कौन से वृक्ष कहां बनने वाले हैं और उनका क्या सौभाग्य है। नारद मुनि को पता था कि वो अज्ञात सकृति का बीज बो रहे हैं, जो कि कितने वर्षों पश्चात उसका फल नलकोर और मणिग्रीव को मिला। हां, तो जो इतने आवरणात्मिक शक्ति के अधीन रहते हैं वो तुरंत भक्ति में नहीं आएंगे, जैसे नलकोर मणिग्रीव तुरंत वो नहीं आए भक्ति में, कितने वर्षों पश्चात। लेकिन क्या किया नारद मुनि ने अज्ञात सुकृति, तो हम अज्ञात सुकृति उनकी पैदा कर सकते हैं, प्रसाद देकर या हरिनाम जो भी कुछ सुनाकर। जैसे इंद्रदुम्न महाराज श्रील प्रभुपाद को एक दफा बता रहे थे, फ्रांस में वो हरिनाम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हरिनाम जब वो कर रहे थे, सभी भक्त नाचते हुए कीर्तन कर रहे थे, तो एक वृद्ध महिला पता नहीं कितनी और सांसें बाकी हैं उसकी, वो अपने कानों को ऐसे बंद करके बिल्कुल नहीं सुनना है ये जो बोल रहे हैं, एकदम टाइटली शी क्लोज्ड हर ईयर्स। तो इंद्रदुम्न महाराज प्रभुपाद को कह रहे थे, तो प्रभुपाद ने कहा, यू आर सच ए ह्यूज बॉडीड पर्सन, यू शुड हैव फोर्सिबली यू नो मेड हर लिसन टू द हरिनाम। प्रभुपाद ने कहा कि यू हैव टू इम्प्लांट द अज्ञात सुकृति, ये जो भी कुछ प्रभुपाद ने चालू करवाया, हरिनाम संकीर्तन, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्या था, कितने जीवों को अज्ञात सुकृति देना, ये सारे ये जो कैटेगरी आप बता रहे हैं। तो हां, ऐसे बहुत से हैं जो इस कैटेगरी में, केवल प्राणी नहीं, जानवर नहीं, द्विपाद पशु भी, इंसान भी, तो उनको हम अज्ञात सुकृति दें किसी न किसी प्रकार से। कुछ नहीं तो शुद्ध भक्त जब प्रार्थना करते हैं, जैसे वासुदेव दत्त, प्रहलाद महाराज जो ये प्रार्थना करते हैं, वो भी अज्ञात सुकृति किसी न किसी प्रकार से पैदा कर रहा है इन बद्ध जीवों के जीवन में। तो उदाहरण नलकोर मणिग्रीव का है, कैसे नारद मुनि ने अज्ञात सुकृति उनको दी। मृगारी भी एक दृष्टिकोण से उसी में था वो, लेकिन मृगारी वो उस समय सुधर गया जब उसने दर्शन किया सब यातनाओं का, तो वो नलकोर और मणिग्रीव से ज्यादा एक अच्छी स्थिति में था मृगारी। हालांकि वो एक ऐसा शिकारी था, बारबारिक हंटर, ही वाज अ बारबारिक हंटर, एंड नलकोर मणिग्रीव वर अपरेंटली वेरी रिफाइंड, बट देवर इन अ मोर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन देन मृगारी बिकॉज ऑफ आरोणात्मिक शक्ति। तो अज्ञात सुकृति, हमारे कितने ऐसे उदाहरण हैं जिसमें अज्ञात सुकृति भक्तों ने, जैसे जयानंद प्रभु जयानंद प्रभु वो जब रथ यात्रा का परमिशन लेने जाते थे तो वो जो गवर्नमेंट ऑफिस अमेरिका का उसमें वो केक लेके जाते थे, और ऐसे वो लोग किसी के भी हाथ का केक या भगवान को अर्पित किया गया केक नहीं खाते थे। तो जयानंद प्रभु बोलते थे कि आज मेरी वाइफ का बर्थडे है। अब उनको क्या पता है कि ये रिनाउंस्ड ऑर्डर में है, तो वो ये सुनते अच्छा अच्छा वाइफ का बर्थडे ठीक है तो खा लेते थे, अज्ञात सुकृति पैदा करते थे उनके अंदर, ये ना के ना प्रकार है ना। जैसे हमारा ये मिड डे मील चालू हुआ था तो मेरे ख्याल से शायद मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश वहां पर एक मदरसा जानते हैं आप, जहाँ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर खिचड़ी उन्होंने बांटने का प्रयास किया कि उनके अंदर अज्ञात सुकृति, नहीं तो वो तो कोई हरिनाम वगैरह कोई सुनते कभी नहीं थे। तो उन्हें पता लग गया कि ये खिचड़ी जो है ये लोग ऑफर करते हैं, और वो लोग तो डीटी वर्शिप के बहुत अगेंस्ट हैं, बिल्कुल भी वो ऐसी चीज स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो डिवोटी को पूछे कि भाई तुम, हमें पता लगे तुम ये खिचड़ी जो है तुम्हारे वो प्रतिमाओं को ऑफर करते हो। तो डिवोटी बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम तो खाली एक प्लेट उनको देते हैं, सबको खिलाते हैं एक प्लेट उनको देते हैं, बाकी सब आप लोगों के लिए रहता। तो उन्होंने झूठ भी नहीं कहा सर तो ये न के न प्रकार है ना हमारे भक्त अज्ञात सुकृति पैदा कर रहे हैं। कलयुग में आगे चलकर मोस्टली ये लोग बैठ के प्रवचन नहीं सुनने वाले, छह दिन का गीता कोर्स या भागवत सप्ताह, ये हरिनाम और महाप्रसाद इसी के द्वारा उद्धार की कोई आशा है। और कोई प्रश्न?
कृष्ण तो जी धन्यवाद, बहुत अच्छा क्लास है। तो जी मेरा प्रश्न हरिनाम के संदर्भ में था। प्रभु जी हम जानते हैं कि हमारी जो पूरी साधना भक्ति है या जो भी भक्ति है 99% इस हरिनाम के ऊपर आश्रित है। तो प्रभु जी बहुत बार ये होता है कि जब हम हरिनाम लेते हैं तो शुरुआत में कुछ भी नहीं ये होता, अभी इतने दिनों से हम हरिनाम के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो शुद्ध नाम के लिए या वो अपराध युक्त नाम से ऊपर उठने के लिए, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी ये होने के बाद भी हम उस स्तर पर नहीं ये हो पा रहे हैं, उतनी रुचि नहीं आ रही है हमें हरिनाम में बार बार ये करें। तो हमें कैसे समझे कि हमें कहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है, कौन से रास्ते पे हम ये हो रहे हैं, कहाँ पे मतलब साधना भक्ति में हम कहाँ पे कम पड़ रहे हैं कि हमें उस तक
स्तर तक नाम अपराध वो पहले ही बता दिए ना, इसलिए जपा करने से पहले हम 10 नाम अपराध उसका उच्चारण करते हैं ना मॉर्निंग प्रोग्राम में। तो 10 नाम अपराध, उनमें से यदि कोई भी अपराध हो रहा हो, जैसे कहा गया ना द मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस इनअटेंशन, तो यदि इनअटेंशन है या किसी वैष्णव की निंदा हुई है मानसिक रूप से भी या वाचिक रूप से जो भी, या गुरु की अवज्ञा किसी न किसी प्रकार से, तो हमें आपका प्रश्न है कि हम कैसे चेक करें कि गलती कहां हो रही है। सबसे पहले 10 नाम अपराध, और यदि वो, इसलिए प्रभुपाद ने कहा, जब प्रभुपाद ने कहा चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, तो प्रभुपाद के कहने का अर्थ यह था चैंट ऑफेंसलेस हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। तो वही प्रभुपाद कहते थे यू जस्ट फॉलो द 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स, प्रभुपाद ने कहा स्ट्रिक्टली, एक है टू फॉलो द 4 प्रिंसिपल्स और एक है स्ट्रिक्टली। और एक है चैंटिंग हरे कृष्णा और दूसरा है चैंटिंग हरे कृष्णा ऑफेंसलेसली. जमीन आसमान का अंतर है दोनों में. जैसे कि हम भी वही हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं जिसका जप हरिदास ठाकुर ने किया था, है ना. लेकिन जमीन आसमान का अंतर है. तो चेक कैसे करना है, हर चीज को हम चेक करते हैं गुरु साधु शास्त्र. तो 10 नाम अपराध शास्त्रों में और हमारे गुरु ने और साधु उन्होंने बताया है. तो वो अगर हम ठीक से पालन कर रहे हैं तो 100% प्रगति निश्चित रूप से दिखाई देगी. और जिस हद तक पालन करते हैं उस हद तक, ऐसा नहीं कि हमें प्रगति, हमारी प्रगति नहीं हो रही, हो रही है, कुछ ना कुछ प्रगति तो हो रही है. जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो एक्सेलेरेटर भी दबा रहे हो, क्लच भी दबा रहे हो, तो गाड़ी थोड़ा थोड़ा आगे जा रही है, ब्रेक भी थोड़ा लगा रहे हो, लेकिन लड़खड़ाते हुए जा रही है. तो हमारी भी स्थिति ऐसी है. एक्सेलेरेटर मालूम है, उसके ऊपर लगाया हुआ हमने पैर, लेकिन साथ साथ जो बाकी अटैचमेंट्स है ना, क्लच, क्लच का अर्थ भी वही होता है, दैट विच क्लचेज यू. माया हैज क्लच्ड अस. तो क्योंकि वो भी नहीं छोड़ रहे, तो थोड़ी प्रगति हो रही है. पहले हम एक माला भी जप नहीं कर पाते थे, अब कम से कम मैकेनिकल 16 राउंड्स तो कर रहे हैं ना. पहले तो मैकेनिकल 1 राउंड भी नहीं होता था, तो वहां से तो प्रगति हुई है ना. पहले तो हम नरक के रास्ते पे थे, वहां से तो बाहर आ गए. एटलीस्ट देयर इज सम प्रोग्रेस गोइंग ऑन, दैट इज अवर होप. और कोई प्रश्न? श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय.